अरुणिमा एकदम हैरान रह गई जब अचानक आस्तिक ने निशांत का गिरेबान पकड़ लिया। वहां लोग इकट्ठा हो गए थे और आने जाने वाले रुककर देखने लगे थे। आस्तिक का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था, लेकिन निशांत अब भी खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहा था। हालांकि इतना कुछ होने के बाद किसी का भी गुस्सा फूट सकता था, लेकिन फिर भी निशांत ने अपने गुस्से पर काबू रखते हुए आस्तिक को घूरकर सख्त लहजे में कहा, मिस्टर रायचंद, छोड़िए मेरा गिरेबान। लेकिन आस्तिक ने उसका गिरेबान छोड़ने के बजाय उसे पीछे की ओर धक्का दे दिया, जिससे निशांत पीछे दीवार से जा टकराया। आस्तिक उस पर हमला करने ही वाला था कि अरुणिमा ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे बाहर की ओर खींचते हुए कहा, क्या कर रहे हो, क्यों तमाशा कर रहे हो, चलो यहां से। आस्तिक ने गुस्से से अरुणिमा को देखा। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। उसने गुस्से भरी आवाज में अरुणिमा को देखते हुए कहा, इस कमीने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें हाथ लगाने की, मैं इसका हाथ काट दूंगा। लेकिन अरुणिमा फिर भी उसे खींचते हुए बोली, आस्तिक क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या, देखो यहाँ कितने लोग हैं, तुम्हारी रेपुटेशन खराब हो सकती है, चलो यहाँ से। पर आस्तिक ने अरुणिमा का हाथ झटक दिया और फिर से निशांत की ओर बढ़ गया। निशांत अभी अभी खड़ा हुआ ही था और अपने कपड़े ठीक कर रहा था कि आस्तिक फिर से उसकी कॉलर पकड़कर उसे दूसरी दिशा में धक्का दे देता है। वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, हिम्मत कैसे हुई थी मेरी बीवी को हाथ लगाने की, जब से हम यहाँ आए हैं तब से देख रहा हूँ कि तू उससे फ्रेंड बनने की कोशिश कर रहा है, अपने टेबल से भी मेरी बीवी को ही घूर रहा था ना, तेरी आंखें निकाल लूंगा मैं, जानता नहीं है मुझे, प्लास्टिक रायचंद नाम है मेरा। पर इस बार निशांत ने हार नहीं मानी। उसने आस्तिक का हाथ पकड़ लिया और गिरिबान छुड़ाते हुए कहा, होश में आओ मिस्टर रायचंद, पागल हो गए हो क्या, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, अपनी बातों में कुछ भी बोले जा रहे हो, मैं ऐसा इंसान नहीं हूं जो दूसरों की बीवियों पर नजर रखे, कुछ बात करनी थी इसलिए उससे बात कर रहा था। आस्तिक अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाया। उसने एक हाथ से फिर से निशांत का गिरेबान पकड़ लिया और दूसरे हाथ से उसे घूंसा मारने ही वाला था कि तभी अरुणिमा जल्दी से उसके पास आ गई। उसने आस्तिक के सीने पर हाथ रखकर और उसके हाथ को पकड़ते हुए खींचते हुए कहा, आस्तिक क्या कर रहे हो, चलो यहां से, क्यों तमाशा कर रहे हो, प्लीज चलो। आस्तिक ने एक गुस्से भरी नजर निशांत पर डाली और फिर अरुणिमा के लिए उसे छोड़ दिया। अरुणिमा ने आस्तिक के कपड़े ठीक किए और उसे बाहर ले जाने ही वाली थी कि तभी निशांत अपने गुस्से को ना रोक सका और बोला, मुझे अफसोस होता है अरुणिमा पर और उसकी किस्मत पर कि उसे तुम जैसे इंसान मिले, तुम जैसा आदमी अरुणिमा जैसी लड़की को डिजर्व ही नहीं करता। इस पर आस्तिक के भीतर का ज्वालामुखी फट गया। उसने अरुणिमा के हाथों को झटकते हुए पीछे मुड़कर निशांत के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारा। आस्तिक का हाथ इतने जोर से पड़ा कि निशांत जमीन पर गिर पड़ा और उसके मुंह से खून निकल आया। अरुणिमा ने अपने दोनों हाथों से अपना मुंह ढक लिया। उसकी आंखें डर से फटी की फटी रह गईं। उसका पूरा शरीर कांप उठा क्योंकि वो देख सकती थी कि आस्तिक कितनी तेजी से सांस ले रहा था और उसका चेहरा गुस्से में तमतमाया हुआ था। आस्तिक फिर से निशांत पर हमला करने के लिए बढ़ रहा था, लेकिन इस बार अरुणिमा ने पूरी ताकत से उसे रोक लिया। उसने आस्तिक को पकड़कर होटल के बाहर खींचना शुरू कर दिया। आस्तिक अब भी गुस्से में निशांत को देख रहा था। उसका पूरा चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था और निशांत, जो अब मुंह से खून पहुंचते हुए उठ रहा था, होटल का स्टाफ उसकी मदद कर रहा था। होटल से बाहर निकलते हुए अरुणिमा ने एक नज़र निशांत को देखा और अपनी आंखों से उससे माफ़ी मांगने का इशारा किया, लेकिन निशांत उसे दूर से घूरते हुए देख रहा था जैसे कि उसकी आंखें कुछ कहना चाहती हों। जैसे ही आस्तिक रेस्टोरेंट से बाहर आया, वो तुरंत अरुणिमा को अपनी तरफ खींचता है और कसकर उसे अपनी बाहों में भर लेता है। अरुणिमा का सिर आस्तिक के सीने पर था और वो उसकी धड़कनों को महसूस कर रही थी। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। आस्तिक अरुणिमा को अपनी बाहों में लेकर शायद खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अगले ही पल उसने अरुणिमा को गाड़ी से टिका दिया और उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। अचानक हुए स्पर्श से अरुणिमा का संतुलन बिगड़ गया, लेकिन उसने दोनों हाथ गाड़ी के दरवाजे पर रखकर खुद को संभालने की कोशिश की। आस्तिक का दिल और दिमाग इस वक्त सिर्फ अरुणिमा के ही हो चुके थे। वो बेतहाशा उसे चूम रहा था, मानो अपने गुस्से को उतार रहा हो। उसके दिमाग में कई बातें घूम रही थीं और जितना वो सोचता, उसकी हालत उतनी ही गहरी और खतरनाक होती जा रही थी। वो अपने होश में नहीं था। जब अरुणिमा से ये सब और बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने अपने हाथ पैर ढीले छोड़ दिए और आस्तिक को वही करने दिया जो वो करना चाहता था। लेकिन आस्तिक इस कदर वाइल्ड हो चुका था कि अरुणिमा ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी। उसके होंठों से खून निकलने लगा था। जब आस्तिक के खुद के मुंह में खून का स्वाद आया, तब जाकर उसने अरुणिमा के होंठों को छोड़ा। उसके खुद के होंठ भी फट चुके थे क्योंकि वो इतनी जोर से चूम रहा था कि अपने ही होंठों को घायल कर बैठा था। अरुणिमा की तो उसने बुरी हालत कर ही दी थी। जैसे ही आस्तिक उसके होंठों से अलग होता है, अरुणिमा बेदम होकर हाँफने लगती है। वो आस्तिक को अपनी लाल आंखों से देख रही थी। आस्तिक का गुस्सा अरुणिमा को चूमने के बाद थोड़ा शांत जरूर हुआ था, लेकिन उसके कानों में अब भी निशांत की बात गूंज रही थी कि आस्तिक अरुणिमा के लायक नहीं है। आस्तिक का दिमाग पूरी तरह से बेकाबू हो चुका था। उसने अरुणिमा के चेहरे को अपने हाथों में लिया और अपना चेहरा उसके बहुत करीब लाकर कहा, तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। किसी की हिम्मत नहीं जो तुम्हें नजर उठाकर देखे। मैं उस कमीने को जान से मार दूंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें हाथ लगाने की? जैसे ही आस्तिक ने यह कहा, अरुणिमा डर गई। उसने जल्दी से आस्तिक की ओर देखा और सिर हिलाते हुए बोली, प्लीज आस्तिक, निशांत को कुछ मत करना, उसकी इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन आस्तिक का गुस्सा अब भी उस पर हावी था। वो गुस्से में अरुणिमा को देखते हुए बोला, इतनी आसानी से मैं उसे नहीं जाने दूंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं? वो होता कौन है हमारे बीच बोलने वाला? तुम बताओ, मैं हूं ना तुम्हारे लायक? बताओ मुझे, तुम डिजर्व करती हो ना मुझे? और तुम मेरे साथ रहना चाहती हो, है ना अरुणिमा? बताओ। तो आस्तिक और अरुणिमा के चाहने वालों, देखते हैं आप कितना बेहतर जान पाए हैं इन दोनों को। ये चैलेंज है आपके लिए। क्या लगता है आपको कि अरुणिमा आस्तिक के इस सवाल का क्या जवाब देगी? मुझे कमेंट में बताइए और देखते हैं किसका जवाब अरुणिमा के जवाब से मिलता जुलता है।